आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपात का दिवस है। इसी दिवस पर करीब करीब 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पे धारण किया था, लगातार 7 दिन। ये लीला भगवान के प्रसिद्ध लीलाओं में से है। हर कोई बच्चा जानता है कि किस तरह भगवान ने इस विराट पर्वत को उठाया था और धारण किया था लगातार 7 दिन। भगवान जब मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो साधारण मनुष्य की तरह रहते हैं, उठते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन बीच बीच में अचानक वो अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, अपने विभूति का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन भगवान इसलिए करते हैं, एक तो उनके भक्तों को आनंद देने के लिए, दूसरा लीला का रस बढ़ाने के लिए, तीसरा भक्तों की सुरक्षा के लिए, और चौथा यह दिखाने के लिए कि वास्तव में हालांकि मैं मनुष्य समाज में प्रकट हुआ हूं, फिर भी मेरा अस्तित्व वैसे का वैसे ही रहता है। अर्थात मैं पहले भी भगवान था और जब मन में प्रकट हो जाता हूं तब भी मैं भगवान ही रहता हूं। ये नहीं समझना कि मैं मनुष्य समाज में आया हूं इसलिए मैं आपकी तरह हूं। मैं तो ये नाटक कर रहा हूं, ये मेरी लीला है। ऐसे में अपने आप को प्रस्तुत करता हूं कि मानो मैं आप जैसा ही हूं। ये केवल इसलिए है कि मेरे भक्तों का रस बढ़े, मुझ में और भक्तों में जो प्रेम का संबंध है वो और भी मीठा और मधुर हो जाए। इसके लिए मैं ऐसी लीला करता हूं, अपने आप को ऐसे पेश करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो परम सत्य हूं, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नियंत्रण करता हूं। इसलिए भगवान बीच बीच में ऐसे अद्भुत लीलाएं भी प्रदर्शित करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान के दामोदर लीला, यहां भगवान एक साथ साधारण बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं और दूसरी ओर बीच बीच में अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। तो यहां गोवर्धन लीला में भी ऐसे ही हुआ ये कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के द्विज पत्नियों के ऊपर, ब्राह्मणों की पत्नी के ऊपर असीम कृपा की, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा के लिए व्यवस्था कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण केवल 7 साल के थे और तैयारियां बड़े जोर से चल रही थी, यज्ञ की सामग्रियां वगैरह एकत्र हो रही थी, ब्राह्मण एकत्र हुए थे पूजा पाठ करने के लिए, मंत्रों का उच्चारण करने के लिए। और उस समय मन ही मन में श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे ये तो मेरे नित्य पार्षद हैं, मेरे भक्त हैं, और अभी ये लोग इंद्रदेव की पूजा, एक देवता की पूजा करने जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम एक लीला करते हैं। वैसे भी श्री कृष्ण अंतर्यामी होने के नाते ये जानते थे कि इंद्रदेव जो कि देवताओं के राजा हैं, उनके हृदय में घमंड की भावना निर्माण हुई थी और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। इंद्रदेव भगवान के भक्त हैं क्योंकि सारे देवता भगवान के भक्त हैं, देवता और असुर में यही अंतर होता है। तो जब भगवान ने देखा कि उनके भक्त के अंदर एक अभिमान घमंड उत्पन्न हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि मेरे भक्त को ठीक तरह से लाइन में कैसे हलाया जाए। हम जब भक्ति करते हैं अगर हमारे मन में कोई घमंड उत्पन्न हो जाता है तो भगवान सही तरह से हमारे घमंड को चूर चूर करते हैं, सही दूसरे भक्तों को निमित्त बनाते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति को निमित्त बनाते हैं, कोई बाहर के लोगों को निमित्त बनाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं जिससे भक्त को समझ में आता है कि मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो केवल कृष्ण के दास का दास का दास हूं। यह भगवान की कृपा होती है। तो उन्होंने नंद महाराज के पास जाकर वो कहने लगे, पिताजी ये जो आप विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए, इसका क्या प्रयोजन है? आप ये क्यों कर रहे हैं? और वैसे ये संपन्न करने का तरीका क्या है? कृपया मुझे ये अच्छी तरह से समझाइए। जो साधु वृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसी बातें किसी से छुपाते नहीं हैं, क्योंकि साधु जो होते हैं वो मित्र शत्रु इत्यादि में भेदभाव नहीं करते, और अगर वो भेदभाव करता भी हो और अगर कोई व्यक्ति उदासीन हो तो उसको शायद शत्रु के बराबर समझे, लेकिन मैं तो कोई शत्रु नहीं, मैं तो आत्मज हूं, आपका पुत्र हूं, इसलिए आपके मित्र आपके हृदय के बराबर हूं, इसलिए मुझसे तो आपको इन बातों को छुपाना नहीं चाहिए। तो कृपया मुझे बताइए कि ये जो अभी कार्यक्रम अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है, ये क्या किसी के मनगढ़ंत ढंग से हो रहा है, किसी लोक परंपरा के अनुसार हो रहा है, प्रथा है कोई जो अनादि काल से चलती आ रही है, या शास्त्रों के ऊपर आधारित है? हमें कोई कार्य अंधे होकर नहीं करना चाहिए। अगर हम ये समझ लें कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य जाने बगैर हम कोई कार्य करने जाएंगे तो फिर उसमें सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो जब नंद महाराज ने यह बात सुनी तो नंद महाराज उत्तर देने लगे। पहले शायद उनके मन में यह संशय हुआ होगा कि यह 7 साल का बच्चा है, भले ये क्या समझेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इतनी चतुराई से इतने सुंदर ढंग से अपने बात को प्रस्तुत की कि नंद महाराज को बोलना ही पड़ा। और नंद महाराज कहने लगे कि देखो पर्जन्यो भगवान इंद्रः, कि पर्जन्य अर्थात जो बारिश है उसके स्वामी इंद्रदेव हैं, और जो मेघ हैं बादल वो तो उनके प्रतिनिधि हैं, और ये मेघ यहां पृथ्वी के ऊपर वर्षा बरसाते हैं, और वर्षा बरसने से यह सारे अनाज इत्यादि उत्पन्न होता है और सारे मनुष्य और प्राणी संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका भरण पोषण वो केवल बारिश से ही होता है। हम पूरी तरह से बारिश के ऊपर निर्भर हैं, और बारिश देने वाले हैं इंद्रदेव, मतलब हमारे सुख के रहस्य हैं इंद्रदेव, इसलिए हम इंद्रदेव की पूजा करना चाहते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने ये बात सुनी तो वो कहने लगे, अनेक कारण व्यक्त करने लगे, प्रस्तुत करने लगे। अब वैसे श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भगवान ने कई तरह के कारण दिए, अलग अलग तरह के जो दर्शन होते हैं, जो झूठे दर्शन होते हैं उनको सामने किया। ये दर्शन प्रामाणिक दर्शन नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल मजाक उड़ाना चाहते थे अपने भक्तों का। तो फिर वो कहने लगे कि देखो पिताजी, अपना जीवन का सुख दुख जो है वो हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर होता है, हमारा जन्म हमारी मृत्यु और इन दोनों के बीच में जो भी सुख दुख है, जो भी चिंता है, जो भी कुछ है, वो कर्मों के फल होते हैं, इसलिए कर्म ही सब कुछ है, कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है, इसलिए कर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ये संसार में। और वैसे कर्म का फल हमें मिलता है, और कर्म मिलने से हम सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान जैसे व्यक्ति हैं भी तो हमें जानना चाहिए कि वो पूरी तरह से इस कर्म करने वाले व्यक्तियों के ऊपर वो निर्भर हैं, क्यों अगर कर्म कोई व्यक्ति करते नहीं तो फिर कर्म का फल देने का सवाल ही नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर कोई गुनहगार होते ही नहीं तो फिर जेल बांधने का काम ही क्या, प्रयोजन ही क्या होता। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे दर्शन को प्रस्तुत कर रहे थे जिसका नाम है कर्म मीमांसा। ये बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है। ये भी एक नास्तिक दर्शन है। ऐसा नहीं है कि नास्तिकवाद ये कोई नई बात है कि आजकल के जमाने में ये नए दर्शन किसी ने इसकी रचना की है। पुराने आदि काल से ऐसे दर्शन चलते आए हैं। तो कर्म मीमांस में ऐसे कहा जाता है कि वास्तव में कर्म ही परम है और भगवान भगवान कुछ नहीं है। भगवान अगर है भी तो वो भी कर्म के अधीन है। कर्म ही परम है इसलिए कि हर एक व्यक्ति कर्मों के फल को भुगतता ही है। हर एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है और जब कर्म करता है तो कर्म के फल उसको मिलते ही हैं। तो इस तरह से कर्म ही परम है, ये कर्म मीमांस सिद्धांत है। लेकिन ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि हालांकि कर्म के फल हमें अवश्य मिलते हैं लेकिन भगवान इस कर्म के ऊपर निर्भर नहीं है। कर्म के कानून को बनाने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और क्योंकि वो कानून को बनाते हैं इसलिए वो इस कानून के अधीन कभी नहीं होते, इस कानून के वश में वो कभी नहीं होते। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तते। ये जो भौतिक सृष्टि है ये कायदे या कानून के अनुसार चल रहा है और ये सब कुछ मेरी अध्यक्षता में चल रहा है अर्जुन। इस तरह से कर्म का जो कानून है वो सूक्ष्म है लेकिन फिर भी वो भगवान के निर्देशन में ही चल रहा है। इसलिए कर्म मीमांसा सिद्धांत जो है वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण किसी न किसी तरह से अपने पिता और अन्य ब्रजवासियों को इंद्र पूजा से दूर हटाकर उनको गोवर्धन की पूजा के पथ में लाना चाहते थे। और उन्होंने ये कहा कि वास्तव में अगर कोई भगवान है भी तो ये भगवान भी कर्म के सिद्धांत के वश में है। तो अब तक श्री कृष्ण ने तीन बातें कही हैं, एक कि कर्म ही परम है, दूसरा कि भगवान फलों के ऊपर निर्भर है क्योंकि कर्म करने वाले रहेंगे नहीं तो कर्म का फल क्या देंगे वो, और तीसरी बात कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण या भगवान जो है वो कर्म के नियम के अधीन है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जो अभी प्रवचन दिया अपने पिताजी को वो झूठा प्रवचन था, असत्य था। इसलिए आचार्य बताते हैं कि अगर भगवान भी स्वयं आए और ऐसी कोई बात कहे जो कि शास्त्र के विरुद्ध है तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिस भावना से यह बात बोली वो अपने भक्तों को, भक्तों की परीक्षा लेना चाहते थे और किसी न किसी तरह से उनको गोवर्धन की पूजा कराना चाहते थे उनसे। हम देखते हैं कि बुद्ध जो है वो भी श्री कृष्ण के अवतार हैं, दशावतार में से एक है। जो वैष्णव होते हैं वो ये मानते हैं कि बुद्ध देव भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। लेकिन बुद्ध ने जो प्रवचन किया या उन्होंने जो शिक्षा उपदेश दिए अपने अनुयायियों को, इस उपदेश को वैष्णव स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बौद्ध धर्म ये एक नास्तिक धर्म है। इसमें भगवान में कोई विश्वास नहीं है, इसको शून्यवाद कहते हैं। बुद्ध ने प्रचार किया कि यह सब कुछ शून्य है, किसी भी चीज का अस्तित्व वास्तव में है ही नहीं, वास्तव में सब कुछ शून्य है। और अगर हम किसी चीज का अस्तित्व देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वह केवल भ्रम है, मिथ्या है, माया है। जब हम माया से परे हो जाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि वास्तव में यह सब माया है, और उस समय सब कुछ शून्य होगा। इसको शून्यवाद कहते हैं। इस तरह से बुद्ध जो कि भगवान के अवतार हैं, उन्होंने जो भी बातें कही हम स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण ने यहां कर्म मीमांस की सिद्धांत का वर्णन किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करें। कोई व्यक्ति अगर तर्क करे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात को कहा तो हमें स्वीकार करना चाहिए, तो इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ने शास्त्रों के विरुद्ध कोई बात की इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्र वास्तव में भगवान की वाणी है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यह धर्म होता है। वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न होती है, वेद भगवान से अभिन्न है, इसलिए वेद ही सबसे महान है यहां पर। इसलिए हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों को समझने के लिए जब शास्त्रों के सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं या तो फिर अपने भक्तों को भेजते हैं यहां पर, ताकि धर्म का प्रचार हो, धर्म की संस्थापना हो। तो फिर आगे भगवान कहने लगे कि कर्म तो क्या, यह सब कुछ तीन गुणों के अधीन है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। इसलिए तीन गुण प्रधान हैं। अगर यहां सब कुछ हम देखें, ये सब क्या चल रहा है समाज में, तो इन सब के पीछे जो आधार है वो भौतिक गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। इसलिए यही सब चीजों के कारण है। अगर वर्षा हो रही है बादलों से, तो बादल इसलिए वर्षा दे रहे हैं कि वो रजगुण से प्रेरित हो रहे हैं। तो इसमें इंद्रदेव की क्या भूमिका है, इंद्रदेव इसमें क्या कर सकते हैं, ये केवल भौतिक गुण अपना कार्य कर रहे हैं। और वैसे भी प्रारब्ध या किस्मत जो है यही परम है, जो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार होना है वो तो होगा, और इंद्रदेव इसमें क्या कर सकते हैं। मेरा निवेदन ये है, मेरी इच्छा ये है कि हम इंद्रदेव की पूजा को छोड़कर हम गोवर्धन की पूजा करें, क्योंकि हम तो वन में गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, हम वैश्य हैं और हमारा मुख्य काम है गौओं की रक्षा करना। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो वैश्य होते हैं उनके ये तीन प्रमुख कार्य होते हैं, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। और वृंदावन के जो निवासी थे ज्यादातर गोरक्षा करते थे। नंद महाराज के कितने सारे गाय थे, हर एक ब्रजवासी के कितने गाय थे। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने नंद महाराज से कहा कि वैसे देखा जाए तो हम गौओं के ऊपर निर्भर हैं, और गाय घास इत्यादि के ऊपर निर्भर है, और ये घास, कंद मूल इत्यादि ये सब गोवर्धन के ऊपर आता है। गोवर्धन हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, गोवर्धन ही हमें आश्रय देता है, गोवर्धन ही हमारा पालन पोषण करने वाला है। इसलिए हमें इंद्रदेव की पूजा छोड़कर हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। वास्तव में सही है ये। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि जब गोपियां आपस में बातचीत कर रही होती हैं, तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, गोवर्धन की महिमा का गुणगान करती है, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् सूयवस कंदर कंद मूलै। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हंता, हाय हाय, देखो अयम, इस अद्रि का, इस पर्वत का, हंतायम अद्रि सखी, हे मित्र देखो इसका भाग्य कितना है। हंत अयम अद्रि अबला हरिदास वर्यः, ये जो गोवर्धन है ये हरिदास है, श्री कृष्ण का दास है और कोई साधारण दास नहीं है, वर्यः श्रेष्ठ। तो कृष्ण दासों में से ये गोवर्धन जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय है। और वैसे देखा जाए यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राम के चरण कमल उनके ऊपर पड़े हैं, इसलिए कितनी मुदित अवस्था में है, प्रमोद है। प्रमोद मतलब बहुत हर्ष आनंदित है गोवर्धन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमलों का स्पर्श हुआ है उसके ऊपर। मानम तनोति सह को गणयोस्तयोर्यत, और वो श्री कृष्ण को और बलराम को वैसे सम्मान दे रहा है, अपना सर झुका रहा है, अपना सब कुछ श्री कृष्ण और उनके गौओं के लिए, उनके ग्वाल बाल मित्रों के लिए प्रदान कर रहा है। वैसे गोवर्धन में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं। पाणी सूय वस कंदर कंद मूल ही, वहां के जो कंद मूल हैं उससे कृष्ण और ग्वाल बाल जो हैं वो खाया करते थे जब उनको भूख लगती थी, और कभी कभी उनके गौएं स्वादिष्ट वहां के घास वगैरह खाया करते थे। वहां पे झरने वगैरह बहुत हुआ करती थी जिसमें शीतल जल मिला करता था। वहां पर ऐसे गुफे हुआ करते थे जिसमें आसानी से गर्मी से राहत प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ जाकर आराम कर सकते थे, और अगर थक जाते थे तो वहां वृक्षों के नीचे भी आराम कर सकते थे। वहां पे और कितने सारे सुंदर पशु पक्षी थे। इस तरह से गोवर्धन के ऊपर सब कुछ था जिससे कि वृंदावन के निवासियों की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको कहा था इस तरह से, वो बिल्कुल सही था कि गोवर्धन ही उनका पालन पोषण करने वाला था। तो नंद महाराज और ब्रजवासियों ने तुरंत इस बात को स्वीकार किया, और स्वीकार करके सारी जो भी सामग्री गोवर्धन की पूजा के लिए वो करने वाले थे, इस्तेमाल करने वाले थे, वो गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ठीक है, अभी जितना भी सब सामग्री आपके पास है वो गोवर्धन को अर्पण करो। अभी जो भी ब्राह्मण यहां हैं उनको एकत्र करो, उनसे सुंदर मंत्रों का पाठ कराओ, और ऐसे पाठ करने से जो यज्ञ होंगे उसके बाद में सारे ब्राह्मणों को खिलाओ, उसके बाद में सारे जो भी महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, सारे प्राणियों को खिलाओ, यहां तक कि नीच योनि में जन्म लेने वाले जैसे कि कुत्ते हैं, कुत्ते को खाने वाले हैं चंडाल, उनको भी खिलाओ, और फिर बड़े अच्छे वस्त्र इत्यादि पहनकर सब गोवर्धन की परिक्रमा करो। तो सारे ब्रजवासी तैयार हो गए और बड़े धूमधाम से सारे यज्ञ पूजा पाठ शास्त्रों का उच्चारण वगैरह आरंभ हो गया। और ऐसे करते करते सारे ब्रजवासियों को भोजन खिलाया गया, और जब सारी सामग्री अर्पण की गई गोवर्धन जी को, तो उस समय भगवान ने गोवर्धन का एक विराट रूप धारण किया, बहुत बड़ा रूप। सारे ब्रजवासी इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और फिर उन्होंने सारे कृष्ण को देखकर कृष्ण के पीछे पीछे चल के गोवर्धन को प्रणाम किया। अब देखिए, गोवर्धन भगवान का एक अवतार है, भगवान का दास तो है ही, भगवान की सेवा तो करते हैं ही, लेकिन फिर भी भगवान से अभिन्न भी माने जाते हैं। इसलिए जो वैष्णव होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, वो गोवर्धन शिला की भी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि हमें गोवर्धन शिला जो है किसी ब्रजवासी के अनुमति के बिना नहीं लाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये पाप माना जाता है। केवल अगर कोई ब्रजवासी हमें ये भेंट दे तब हम ये ले सकते हैं। तो गोवर्धन शिला पूजा करने से हमें जो श्री कृष्ण की अर्चन विग्रह की सेवा करने का फल मिलता है वही है, क्योंकि दोनों श्री कृष्ण से अभिन्न है। गोवर्धन शिला और कृष्ण की मूर्ति और कृष्ण, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो गोवर्धन का जो परिचय है वो ये है कि वह स्वयं भगवान है और साथ साथ भगवान के दास भी है। जिस तरह से बलराम जी हैं वो भी स्वयं भगवान है, लेकिन साथ साथ कृष्ण की सेवा भी करते हैं। तो इसके साथ में जब सारे ब्रजवासियों ने देखा कि गोवर्धन ने इतना विराट रूप धारण किया है और सारे सामग्रियों को भोग जो रखा हुआ था वो सब खा लिया। और खाने के बाद गोवर्धन ने कहा अणियोर अणियोर, मतलब और चाहिए और चाहिए। तो ब्रजवासियों ने और रखा, जल्दी से गोवर्धन ने वो खा लिया, फिर कहने लगे अणियोर अणियोर और चाहिए, और रखा ब्रजवासियों ने। लेकिन गोवर्धन की भूख समाप्ति नहीं हो, फिर श्री कृष्ण ब्रजवासियों ने काका क्या किया, तुलसी का पत्ता रख दिया, फिर गोवर्धन संतुष्ट हो गए। जब गोवर्धन ने यह विराट रूप धारण किया था प्रसाद इस भोग को ग्रहण करने के लिए, उस समय श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन को प्रणाम किया, मतलब श्री कृष्ण अपने आप को प्रणाम कर रहे थे। इस तरह से श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि किस तरह से गोवर्धन की पूजा हमें करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में गए थे, वो वृंदावन के ऊपर, वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए नहीं, चढ़े नहीं वो, और उनके पदचिन्हों में चलते हुए भक्त गोवर्धन पे अपना पैर नहीं लगाते हैं, बाहरी बाहर से परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए गोवर्धन के ऊपर चढ़ना मतलब श्री कृष्ण के ऊपर पैर रखना, जो कि बड़ा अपराध है। हाँ, ब्रजवासी लोग वह ऊपर नीचे जाते रहते होंगे, लेकिन वो ब्रजवासी है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो खैर, इस तरह से बड़े धूमधाम से ये गोवर्धन पूजा मनाया गया, और मनाने के बाद फिर सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए तैयार हो गए। सारे जो गोपियां थीं वो अपने अपने बैलगाड़ियों में इत्यादि बैठ गए, और वहां बैठकर फिर रंग बिरंगी कपड़े, नाना प्रकार के आभूषण इत्यादि उनके पास थे, और गीत गाते गाते अपने बच्चों को साथ में लिए हुए वो वहां परिक्रमा के लिए चल पड़े। ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, गोपियां गीत गा रही थी, कुल मिलाकर एक बहुत भव्य बहुत मधुर वातावरण था। सभी बड़े हर्ष उल्लास से श्री कृष्ण और गोवर्धन की प्रशंसा कर रहे थे। और ये सब जब हो गया तो फिर सारे ब्रजवासी अपने अपने स्थान में वापस चले गए। सारे लोग बहुत संतुष्ट थे, नहीं सारे लोग तो नहीं, केवल एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं थे, और वो कौन थे, इंद्र। तो इंद्र अपने धाम में स्वर्ग लोक में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, उनको बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वृंदावन के निवासी इतना बड़ा यज्ञ मेरी प्रसन्नता के लिए संपन्न करने वाले हैं। और फिर उन्होंने देखा कि अरे ये छोटा बच्चा कौन है, ये छोटा बच्चा आके इसने सब मजा किरकिरा कर दिया, इतना सब कुछ मेरे सेवा में होने वाला था और इस बच्चे की वजह से मेरी पूजा होने के बजाय अभी वो पर्वत की पूजा होने लगी, वो पहाड़ की पूजा होने लगी। तो फिर इंद्र ने बड़े गुस्से होकर अपने बादलों को बुलाया, संवर्तक बादल, जो कि केवल सृष्टि के संहार के समय इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े भयंकर बादल होते हैं, इतनी वर्षा बरसाने की शक्ति इनमें है कि थोड़े समय जब ये बरसते हैं तो सारे पृथ्वी को समुद्र से वो आच्छादित कर देते हैं, इतने शक्तिशाली बादल। हमारे यहां बरसात में जो बादल होते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो थोड़े बूंद देते हैं, लेकिन ये सादल होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। तो इंद्रदेव ने बड़ा गुस्से होकर इनको बुलाया और कहा कि ये जो वृंदावन के निवासी हैं, अपने ऐश्वर्य की वजह से बड़े घमंडित हो गए हैं, और ये घमंड इसलिए है कि ये छोटा बच्चा जो श्री कृष्ण है उसने उनको उकसाया हुआ है, और इसलिए उनको हमें एक सबक सिखाना चाहिए। और फिर श्री कृष्ण के बारे में इंद्रदेव बड़ी निंदा करने लगे कि ये एक छोटा सा बच्चा है और इसकी बातें सुनकर ये ब्रजवासी बह गए हैं और मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो इंद्रदेव कहने लगे, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपामे चक्रुर अप्रियम। वो कहने लगे कि ये ब्रजवासियों ने बहुत बुरी बात की है, वो देवताओं की अवहेलना की है उन्होंने, और क्यों किया है, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, एक साधारण बालक कृष्ण जो एक मनुष्य है उसका आश्रय उन्होंने लिया है। गोपा में चक्रुर अप्रियम, और इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो देवताओं के विरुद्ध है। वैसे ये बच्चा, ये कृष्ण कालम, वाचालम मतलब जो बहुत बात करता है, जरूरत से ज्यादा बात करता है, बड़बड़ाता है ज्यादा, ये बड़बड़ाने वाला बच्चा है। बालिशम एक छोटा सा बच्चा है, स्तब्धम बहुत घमंडी है, कुछ नहीं मालूम इसको। पंडित मानिनम अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, लेकिन है मूर्ख लेकिन पंडित मानता है। कृष्णम मर्त्यम है एक साधारण मनुष्य, ऐसे साधारण बड़बड़िए बच्चे के आश्रय लेकर ये ब्रजवासियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए उनको ये साहस हुआ कि वो मेरे जैसे देवता की अवहेलना करें, तो इनको सबक सिखाना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक महान आचार्य, वैष्णवाचार्य, वो समझाते हैं कि सरस्वती देवी जो हैं, उन्होंने जब इंद्रदेव की बात सुनी उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने इंद्रदेव के शब्दों के अर्थ को कर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। सरस्वती देवी अक्सर ऐसे काम किया करती हैं, जो कोई कृष्ण की अवहेलना करता है, कृष्ण की निंदा करता है, तो सरस्वती देवी उन शब्दों के अर्थ को बदलकर वो उन्हीं शब्दों को कृष्ण की प्रशंसा में परिवर्तित कर देती है। तो सरस्वती देवी ने कहा कि वास्तव में इंद्र ने कृष्ण की प्रशंसा की है, निंदा नहीं की है। क्यों? क्योंकि उनको उन्होंने श्री कृष्ण को बालिशम बताया। बालिशम मतलब ये कि एक साधारण बच्चे जैसा शुद्ध और मासूम। बच्चे होते हैं वो बड़े मासूम होते हैं, उनमें कोई कपट की भावना वगैरह नहीं होती। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो छल कपट की भावना उसके मन में आ जाती है, वो बोलता कुछ है, मन में दूसरा ही कुछ सोचता है और करता कुछ तीसरा ही है। तो बड़े लोग बड़े विचित्र होते हैं, लेकिन बच्चे बड़े शुद्ध होते हैं, मासूम होते हैं। इसलिए तो कृष्ण की प्रशंसा है, क्योंकि इंद्रदेव कह रहे हैं कि कृष्ण कितने शुद्ध हैं, कितने मासूम हैं। स्तब्धम, इंद्रदेव कहना चाह रहे थे कि ये कितना घमंड इनका है, लेकिन सरस्वती देवी ने उसको अर्थ बदल दिया और कहा कि श्री कृष्ण के सामने ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके सामने उनको सर झुकाना पड़े, क्योंकि श्री कृष्ण है। तो इंद्रदेव ने जब उनको स्तब्ध कहा तो इसका मतलब है कि श्री कृष्ण की प्रशंसा की कि ये सबसे महान है और इनसे परे कोई है नहीं। अज्ञम, अज्ञम मतलब ऐसा कोई नहीं है जो कि श्री कृष्ण को जानता है। श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, हालांकि इंद्रदेव कहना चाहते थे कि यह अज्ञानी है, लेकिन सरस्वती देवी ने इसका अर्थ बदल दिया और कहने लगे कि इंद्रदेव का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को नहीं जान सकता, श्री कृष्ण इतने महान है। पंडित मानिनम, इंद्रदेव कहना चाहते थे कि ये श्री कृष्ण अपने आप को पंडित मानता है, लेकिन सरस्वती देवी ने क्या अर्थ बनाया इसका, वो कहने लगे कि सारे जो पंडित हैं वो इनको मानते हैं, वो इनको स्वीकार करते हैं। मर्त्यम, मर्त्य मतलब एक साधारण मनुष्य जो मर्त्यलोक में पैदा होता है, लेकिन सरस्वती देवी ने क्या अर्थ लगाया कि हालांकि वो भगवान हैं फिर भी मर्त्यलोक में अवतार लेते हैं। तो इस तरह से सरस्वती देवी ने इंद्रदेव के शब्दों को जो कि निंदा के कही गई थी उनको प्रशंसा में परिवर्तित करके श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। तो खैर, सांवर्तक बादल वो बड़े घबरा गए श्री इंद्रदेव को ऐसे गुस्से की भावना में देखकर, तो सीधे चले गए। इंद्रदेव ने कहा कि तुम जाओ और भयंकर वर्षा वृंदावन के निवासियों के ऊपर बरसाओ, और मैं शीघ्र ही मेरे वाहन ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर आता हूं, और साथ साथ मैं वायु देवों को भी लेकर आता हूं। तो सांवर्तक बादल वहां चले गए वृंदावन के ऊपर। वृंदावन क्या है, बड़े एक छोटा सा स्थान है, छोटा गांव है, जिसमें सरल छोटे साधारण लोग रहते हैं। सिंपल लोग रहते हैं, और वहां जाकर सामर्थक बादल ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। इतनी भयंकर वर्षा और साथ साथ में इतने वायुदेव भी आ गए। सारे वायुदेव जोर जोर से वो हवा बहना वायु बहाने लगे, शीतल कितनी ठंडी वायु। और जो सामर्थक बादलों से वर्षा होने लगी, साधारण वर्षा नहीं थी। हम जो वर्षा का अनुभव करते हैं, भारी से भारी वर्षा भी क्यों ना हो, वो कैसे होता है? बूंद गिरते हैं, लेकिन सामवर्तक बादलों से जो वर्षा हुई थी वो खंभों के बराबर थी। खंभे, पानी के खंभे गिर रहे थे, कितने भारी भारी। और बहुत ही जल्द जमीन और पानी में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा था। और इतनी ठंडी हवा, साथ साथ में इतने बड़े बड़े पानी के खंभे गिर रहे हैं, तो सारे ब्रजवासी गोप गोपी गाय पशु सब त्राही त्राही करके बिल्कुल दुखी हो गए। और उस समय ब्रजवासी और किसके पास जाते? इतनी इतनी खतरनाक अवस्थाओं में केवल एक ही व्यक्ति ने उनको बचाया था, और वो कौन है? श्री कृष्ण। जब दो बार जंगल में आग लग गई थी, तो श्री कृष्ण ने उस आग का पान किया था और उनको बचाया था। कई बार इतने भयंकर असुर वगैरह आए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका वध किया था, ब्रजवासियों को बचाया था। तो कितने सारे ऐसे खतरनाक परिस्थितियों में से भी भगवान ने ब्रजवासियों को बचाया था। ब्रजवासियों के लिए और कोई सहारा नहीं था, और कोई आश्रय नहीं था। तो जो व्यक्ति इसी भावना को ग्रहण करता है, वो भी ब्रजवासी के समान हो जाता है। ब्रजवासी होना इसका मतलब केवल ये नहीं कि हम वृंदावन में जाके निवास करें। ब्रजवासी होने का असली अर्थ ये है कि हमें श्री कृष्ण को अपने हृदय में निवास करने का स्थान देना चाहिए। हमारे हृदय को हमें वृंदावन बनाना चाहिए। मतलब ये कि हमें ऐसी भावना श्री कृष्ण के प्रति रखनी चाहिए कि वही हमारे एकमात्र प्राणधन है, वही हमारे एकमात्र आश्रय है। इनके अलावा और कोई सुख और आनंद हमारे जीवन में नहीं है। तो फिर सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास भागे भागे चले आए। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः। वो कहने त्राही त्राही बज गया, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे अति भाग्यवान श्री कृष्ण, त्रातुम अर्हसि, हम बहुत कष्ट में हैं, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप ही एकमात्र हमारे नाथ हैं, हमारे रक्षक हैं। अभी देखिए, ये जो देव हैं इंद्र कुपिताद, ये बहुत कुपित हो गए हैं, बड़े क्रोधित हो गए हैं, लेकिन आप भक्तवत्सल हैं, आप भक्तों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए हमें बचाइए, इस भीषण आफत से आप हमें बचाइए। तो श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन में सोचा कि मेरे ब्रजवासी मेरे निजी जन हैं, मेरे सहकुटुंबी हैं ये, और इनको इतना कष्ट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देवराज इंद्र इसके मन में इतना घमंड हो गया है। हालांकि देवताओं को सत्वगुण से प्रभावित होना चाहिए, और सत्वगुण में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन इसके हृदय में बहुत घमंड आ गया है। तो इसको मुझे सबक सिखाना चाहिए, और साथ साथ मेरे भक्तों की सुरक्षा करनी चाहिए। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे विचित्र कष्ट की परिस्थिति में डालते हैं, क्योंकि वो उनका प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की भूख बढ़ जाती है, काफी समय से जो भूखा भूखा रहता है, उसके बाद में जब वो भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन ग्रहण करने का आनंद काफी ज्यादा हो जाता है। अगर आदमी का पेट आधा भरा हुआ हो तो उतना आनंद नहीं आता है भोजन लेने से, लेकिन जब भूखा होता है तो भोजन लेने का आता है। ठीक उसी तरह से जब भक्त बड़े पीड़ा की अवस्था में रहते हैं, और वह निस्सहाय भाव से श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, और जब श्री कृष्ण उनकी सुरक्षा करते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं उनके ऊपर, तब जो भक्तों को आनंद की अनुभूति होती है उसकी कोई सीमा नहीं है। वास्तव में ब्रजवासी ये सारे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, और शुद्ध भक्त के लिए कोई दुख नहीं होता। पीड़ा की अवस्था में भी वो जिस भावना की अनुभूति करते हैं वो भी सुख ही है, वो भी दिव्य आनंद है। लेकिन जो भक्ति के रहस्य को, भक्ति के पथ को जानते नहीं है, वो इस बात को समझ नहीं सकते। वो सोचते हैं कि अरे इतना दुख इनको हो रहा है तो ये भला आनंद कैसे कहा जा सकता है। लेकिन दिव्य स्तर पे सब कुछ आनंद होता है। तथाकथित सुख और तथाकथित दुख दोनों चीजें आनंद की होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे संकल्प कर लिया कि मेरे भक्तों की सुरक्षा मुझे करनी है और मेरे भक्त देवराज इंद्र इसके घमंड को भी चूर करके मुझे उसकी भी रक्षा, तो श्री कृष्ण ने जाकर क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वैसे हमें जानना चाहिए कि गोवर्धन पर्वत को उठाकर कृष्ण ने न केवल ब्रजवासियों की रक्षा की लेकिन इंद्रदेव की रक्षा भी की। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव के जीवन में जो खतरा आया था वो ब्रजवासियों के जीवन में जो खतरा आया था उससे ज्यादा खतरनाक था। ब्रजवासियों के जीवन में क्या खतरा आया था? वो तो एक शारीरिक खतरा था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, उनका शरीर नष्ट हो जाता, उनके सारे जो संपत्ति नष्ट हो जाती। लेकिन इंद्र के जीवन में कौन सा खतरा आया था? घमंड। और ये घमंड ऐसा खतरा है जो सब कुछ नष्ट कर देता है, व्यक्ति की आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक चेतना को समाप्त कर सकता है। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें जानना चाहिए कि कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए जिसमें हमारे पैसे हमसे छीन लिए जाएं, जिनमें हमें कोई भयंकर रोग आ जाए, समाज में हमारा अपमान हो जाए, या ऐसी कोई भी भौतिक दुर्घटना हमारे जीवन में हो, हमें जानना चाहिए कि अगर हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम है तो फिर कोई परवाह नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण जो भी अपने भक्तों के से करते हैं वो उनके भलाई के लिए करते हैं। वो भक्त हमेशा ऐसी परिस्थितियों को श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारी भौतिक परिस्थिति अगर बहुत बढ़िया हो, हमारे पास धन अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा धन आते जा रहा है, हम बहुत सुंदर हैं, लोग हमें बहुत मानते हैं, रही है अखबारों में हमारी तस्वीर छाप रहे हैं, और ये सब होते हुए लेकिन अगर हमारे अंदर घमंड है तो फिर ये जो भी कुछ हमारा है वो सब व्यर्थ है। इसलिए इंद्रदेव के जीवन में खतरा ज्यादा था और इंद्रदेव की सुरक्षा करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। बल्कि श्री कृष्ण ने यह गोवर्धन उठाने की लीला ज्यादा से ज्यादा इंद्रदेव की सुरक्षा के लिए की थी, न कि ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए। उन्होंने जानबूझकर ब्रजवासियों को ऐसे परिस्थिति में डाला लेकिन मूल उद्देश्य था इंद्रदेव की सुरक्षा। बताया जाता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण जल्दी से जाकर गोवर्धन पर्वत उठाया। इतनी आसानी से एक बच्चा एक मशरूम को उठाता है। मशरूम मतलब छोटी जो छतरी जैसे एक वनस्पति उगती है जमीन में, बच्चे लोग फूल कैसे उखाड़ते हैं जमीन से, आसानी से उसी तरह कृष्ण गोवर्धन की योग माया शक्ति ने उनके ऊपर जो भी वर्षा थी उसको सुखा दिया, ताकि श्री कृष्ण जब गोवर्धन तक पहुंचे तो एक बूंद पानी भी उनके ऊपर नहीं गिरी थी। उनकी पकड़ी, उनके कपड़े, उनका दिव्य शरीर बिल्कुल गीला नहीं हो गया था। तो उन्होंने आसानी से गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। हरिवंश पुराण में बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से उठाया, आसानी से उठा दिया। वैसे भी ये गोवर्धन पर्वत गगनचुंबी पर्वत था, उसके जो शिखर हैं वो बादलों को चूम रहे थे। श्री कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, इसलिए गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई तो खास बढ़ी नहीं, केवल श्री कृष्ण की ऊंचाई जितनी थी उतनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ गई। लेकिन बात यह है कि इतने बड़े पर्वत को एक 7 साल के बालक ने इतनी आसानी से बाएं हाथ के छोटी उंगली पर धारण किया, और जब धारण किया तो श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से कहा कि आओ आओ, आप भी आओ, पशुओं को भी साथ में लेकर आओ, और डरो नहीं, ये संशय मत करना कि पहाड़ गिर जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक चिंता है ना, कोई पहाड़ उठाए छोटी उंगली पर और फिर हम सबको बुलाए कि आओ नीचे, तो हमारे मन में सबसे पहली चिंता यही रह गई, भाई गिरा तो क्या होगा, हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, हम पहाड़ के बाहर हैं, कम से गीले हैं, बहुत परेशान है, लेकिन जीवित तो हैं, और अगर हम लोग पहाड़ के नीचे चले जाएं तो क्या हो जाएगा, हमारी चटनी हो जाएगी बिल्कुल, हम तो खत्म ही हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण इनकी भावना को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, डरो नहीं, ये मत सोचो कि पहाड़ गिर जाएगा, आओ आओ जल्दी आओ। तो सारे ब्रजवासी वहां पर आ गए, और इस तरह से श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिन और 7 रात उन्होंने इस गोवर्धन पर्वत को आराम से धारण किया। बताया जाता है कि सांवर तक बादल बड़ी चेष्टा करके ज्यादा से ज्यादा पानी डाल रहे थे, बहुत परिश्रम कर रहे थे बादल, और ये जो बादल है इनको कभी ऐसा अनुभव नहीं था कि इतना ज्यादा पानी डालने के बाद भी बाढ़ नहीं हो रहा है। भगवान की योग माया शक्ति से जितना भी पानी सांवर तक बादलों से आ रहा था, मथुरा मंडल में कहीं भी पानी का बाढ़ हुआ नहीं। जैसे ही पानी जमीन पर गिरता वो सूख कर ऊपर वाफ होकर चले जाता, और इस तरह से 7 दिन बीत गए, और जो भी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आए श्री कृष्ण के साथ, उनका शरीर पूरा सूख गया, उनको उनके ऊपर एक बूंद पानी भी नहीं आया, उनको बिल्कुल ठंडी नहीं लगी, बिल्कुल मधुर रम्य वातावरण था वहां गोवर्धन के नीचे। यहां तक कि गोवर्धन के ऊपर जितने भी पशु प्राणी थे, जैसे हिरण मृग इत्यादि, उनको भी कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श गोवर्धन को हो रहा था। वो श्लोक हमने आपको बताया गोपी गीत से, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अभी श्री कृष्ण के कर कमलों के स्पर्श से इतने आनंदित हो गया था गोवर्धन पर्वत कि उसके उनके ऊपर जो पशु थे वो भी आनंदित हो गए थे, और इंद्रदेव अपने वज्र चला रहे थे गोवर्धन के ऊपर, बिजली धड़ाधड़ चल रही थी। लेकिन शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत को ये जो बिजली है ये ऐसे लगी कि मानो इंद्रदेव फूल अर्पण कर रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं हुई, और जो हिरण है वो दौड़ते हुए गोवर्धन के शिखर की ओर चले गए, उनको भी कोई कठिनाई नहीं हुई। तो आचार्य ये प्रश्न उठाते हैं कि हालांकि गोवर्धन इतना बड़ा पर्वत तो है नहीं, है बड़ा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि लाखों लाखों गाय को, पशुओं को, गाय के बछड़ों को और इतने सारे ब्रजवासियों को अपने नीचे आश्रय दे सके। नंद महाराज के अकेले उनके 9 लाख गाय थे, और कितने सारे ब्रजवासी और उनके सबके निजी गाय बैल कितने हुए होंगे। लेकिन ये केवल इसलिए संभव था कि श्री कृष्ण के कर कमलों के स्पर्श से गिरी गोवर्धन सर्वशक्तिमान हो गए, इसलिए संभव हो गया। भगवान श्री कृष्ण की लीला में कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज साधारण हो जाती है। और इस तरह से सारे ब्रजवासीगण गोवर्धन के नीचे खड़े हो गए, कोई बैठा नहीं, सभी लोग खड़े थे, और 7 दिन 7 रात सारे ब्रजवासियों ने एक ही काम किया। कौन सा काम किया, क्या कर रहे थे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे 7 दिन 7 रात? भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल को देख रहे थे बस, और देखते रहे 24 घंटे और इसी में उनको इतना आनंद आ रहा था कि उनको कोई भी दुख, कोई भी भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, किसी की भी अनुभूति नहीं हुई। और भगवान की योग माया से 7 दिन बिना भोजन किए हुए उनको भूख भी नहीं लगी। इस तरह से बड़े आराम से आनंद की अवस्था में वो वहां गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे। वृंदावन में यह भी बताया जाता है कि कई गोप जो थे, जब पहले वो आए अंदर, तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण कर रहे हैं। तो आने के बाद उनको लगा कि भाई एक छोटा बच्चा कृष्ण थक जाएगा, क्या होगा उसकी उंगली में घाव वाव आ जाएगा तो क्या होगा, इसे चलो हम उसको भी धारण करके रहते हैं। तो हर एक ब्रजवासी ने अपने अपने लाठी उठाई और लाठी से गोवर्धन को पकड़ लिया, करके पकड़ लिया ऊपर। तो उनको लगा कि हम लोग लाठी से पकड़ रहे हैं इसलिए गोवर्धन अभी ऊपर है। तो हर एक ब्रजवासी खड़ा हो गया लाठी लेकर। तो श्री कृष्ण ने देखा, हंसे और दूसरी बार अपने भक्तों के ऊपर मजाक करना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी उंगली थोड़ी यूं कर दी, तो क्या हो गया कि गोवर्धन पर्वत थोड़ा बंक गया, थोड़ा इस तरफ हो गया। जब इस तरफ हो गया तो ब्रजवासी गोपगण जो थे वो एक तरफ, लाठी दूसरी तरफ, उनकी पगड़ी तीसरी तरफ। फिर उनको समझ में आया कि हम क्या, हमारी लाठी क्या, ये तो केवल हमारा बच्चा कृष्ण ही धारण कर रहा है। वो जान गए कि ये श्री कृष्ण है। तो फिर से वो केवल श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल को देखते देखते आनंद, उनके अमृत का पान करते रहे। उधर इंद्रदेव, एक दिन बीत गया, 2 दिन 3 दिन चिंतित हो गया कि हो क्या रहा है, यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। इंद्रदेव के समझ के बाहर था सब कुछ। 7 दिन के बाद इंद्रदेव के होश ठिकाने आ गए और इंद्रदेव ने सोचा ये बच्चा साधारण नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। फिर इंद्रदेव ने तुरंत सामर्थक बादलों को वापस बुला दिया, अरे जल्दी आओ, बहुत गलती हो गई हमसे, चलो चलो जल्दी आओ। और जैसे सामर्थक बादल वापस आ गए, श्री कृष्ण ने देखा कि सब कुछ बाहर ठीक ठाक है। तो उस समय सारे ब्रजवासियों को उन्होंने कहा कि देखो अब सब ठीक ठाक है, अब अपने अपने स्थान में चले जाओ। तो सब लोग अपने अपने जगह चले गए और फिर श्री कृष्ण ने बड़े आसानी से गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया। अब यह प्रश्न हो सकता है कि रखा कैसे, वो गोवर्धन पर्वत के नीचे बीच में थे और गोवर्धन पर्वत इतना लंबा, तो बाहर बाहर आए कैसे, रखा कैसे उन्होंने। लेकिन भगवान की शक्ति अचिंत्य है। एक गोवर्धन पर्वत तो क्या, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, उनके अंश के अंश के अंश अनंत शेष, उनको एक ब्रह्मांड जो है एक सरसों के बीज के बराबर लगता है। तो अगर श्री कृष्ण ने एक गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया तो कौन सी बड़ी अद्भुत बात है भगवान के लिए। भगवान के लिए विशेष बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए विशेष बात है कि हमारे दृष्टिकोण से ये बहुत अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन है। हम देखते हैं कि जब ये प्रतियोगिता होती है, ओलंपिक जानते हैं ना, खेल क्रीड़ा, उसमें वजन उठाने की प्रतियोगिता रहती है और लोग 200 किलो 300 किलो उठाते हैं, बड़े तगड़े मोटे पहलवान लोग रहते हैं। बचपन से उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है कैसे वजन उठाना, और फिर वो वजन उठाते हैं, फिर अपने सिर के ऊपर ऐसे धारण करते हैं और फिर 2-1 मिनट धारण किया, पसीने पसीने छूट जाते हैं, फिर नीचे धमाक से उसको थमा देते हैं। और जिसने ज्यादा वजन उठाया, 200 किलो 220 किलो स्वर्ण पदक दिया जाता है। लेकिन ऐसे वजन उठाने वाले का चेहरा कभी आपने देखा है, वजन उठाते उठाते उसकी क्या हालत हो जाती है। आदमी को 200 किलो उठाते पसीना छूट जाता है, क्या नहीं हो जाता उसके बेचारे का। लेकिन 200-300 किलो की बात दूर है, भगवान श्री कृष्ण ने एक विराट पर्वत को उठाया और बताया जाता है कि श्री कृष्ण बड़े हसमुख चेहरे से खड़े थे, आराम से पोज मारकर खड़े थे। यहां पे आपने देखा होगा तस्वीर भगवान कृष्ण की, कितने सुंदर ढंग से त्रिभंग ललित रूप में खड़े थे, बके हुए और अपने हाथ यूं रख के आराम से स्टाइल से खड़े थे। जो केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, और कोई नकल नहीं कर सकता। हालांकि हमारे सिनेमा के हीरो वगैरह कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है, असली नायक तो केवल श्री कृष्ण है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बड़े आराम से गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। सारे ब्रजवासी जब तक कि वो गोवर्धन पर्वत के नीचे थे, उनको तो कोई भ्रांति या भ्रम मन में उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जब वो अपने अपने घर वापस चले गए, उस समय सोचने लगे कि अरे पिछले 7 दिनों में क्या हुआ। पिछले 7 दिनों में हम गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े थे, और गोवर्धन पर्वत के नीचे आए कैसे? ये हमारे कृष्ण ने उसके बाएं हाथ के छोटी उंगली से इसको धारण किया। 7 साल के बच्चे ने पर्वत को उठाया। उनका सर चकरा गया, ये क्या हुआ, हम कैसे गए पर्वत के नीचे, हमने इसके ऊपर विश्वास किया, हम चले गए। फिर आपस में सलाह मशवरा करने लगे, और फिर उन्होंने सोचा कि ये सब हमारे समझ के बाहर है। और फिर एक डेलीगेशन लेके, एक दल में लेके वो नंद महाराज के पास गए, और नंद महाराज से कहने लगे कि हे नंद महाराज, देखो हमारे मन में थोड़ा संशय है, ये जो बच्चा है कृष्ण केवल 7 साल का है, लेकिन इसने ये बड़ा पर्वत उठाया, और ये कैसे उठाया है कुछ संभव हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे ये बच्चा, इसको हम क्यों इतना प्रेम करते हैं हमको समझ में नहीं आता, हालांकि हमारा बच्चा नहीं है, हमारे बच्चों से ज्यादा हम तुम्हारे बच्चे से प्रेम करते हैं, और ये भी इतना प्रेम करता है हमसे। जब वो छोटा सा बच्चा था, जन्म होने के थोड़े ही दिन बाद उसने पूतना राक्षसी का वध कर लिया, उसके प्राण ही खींच दिए स्तनपान करते समय, और उसके थोड़े दिन बाद जब उसकी माता ने उसे एक शकट या एक हाथगाड़ी के नीचे रखा था, उस समय एक असुर उसमें छुपा हुआ था, और केवल अपने नन्हे पैरों से उसने लात मारकर उस असुर को खत्म कर दिया। और फिर तृणावर्त असुर आया था जिसने बवंडर का रूप लिया था, और उसका गला दबाकर उसने उसको भी खत्म कर दिया। बाद में और एक भयंकर असुर आया, बकासुर, और श्री कृष्ण ने आसानी से उसके मुंह को फाड़कर उसका वध कर दिया। इसके बाद में श्री कृष्ण ने हम सबको 2 दावानल से बचाया, जंगल की आग, हम सबको उन चीजों से बचाया। फिर उसने कालिया का दमन किया, इतना जहरीला बड़ा भयंकर सांप जिसने सारे यमुना को प्रदूषित कर दिया था, और उसके फणों के ऊपर नाचकर उसका दमन कर दिया। और उसके बाद प्रलंबासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, ऐसे भयंकर असुरों का वध किया, और आज इसने गोवर्धन पर्वत को उसके बाएं हाथ के छोटे उंगली में धारण किया। तो हमारे मन में यह संशय होता है कि यह बच्चा है कौन। जब हम देखते हैं कि इस बच्चे ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, तो हम सोचते हैं कि शायद ये भगवान ही होगा, क्योंकि भगवान के अलावा ऐसे अद्भुत कार्य कौन कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं और हम सोचते हैं, अरे जब हम श्री कृष्ण को लाड़ प्यार नहीं करते तो बड़ा रूठ जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है, हमारे घरों में आकर मक्खन दूध दही चोरी करता है, कभी गुस्सा होकर हमारे बच्चों को परेशान करता है, कभी हमारे दूध के पात्रों को तोड़ देता है, झूठ बोलता है, कितने सारे हरकतें करता है जैसे कि साधारण बच्चे करते हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ये कौन है ये बच्चा। तो हमारे मन में संशय उत्पन्न हुआ है। तो नंद महाराज हंसने लगे और कहने लगे कि चिंता नहीं करो, देखो जब इसका जन्म हुआ था तो उस समय गर्ग ऋषि यहां पर आए हुए थे, और गर्ग ऋषि ने उस समय भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बड़ा विशेष बच्चा है, कई जन्म इसके हो चुके हैं, और पहले जन्म में इसका शुक्ल वर्ण था मतलब सफेद, उसके बाद में रक्त वर्ण मतलब लाल, इसके बाद में पीत वर्ण, पीत रंग का, पीले रंग का, और अब थोड़े सांवले रंग में ये प्रकट हुआ है ये बच्चा। और ये हर युग में आता है और विशेष विशेष कार्य करके जाता है। जब भी पहले देवताओं को कष्ट हुआ असुरों की वजह से, तो इस बच्चे ने जन्म लिया था देवताओं की सहायता करने के लिए। और वैसे इसलिए आपको जानना चाहिए कि इसके गुण नारायण के समान हैं। गर्ग ऋषि ने ये नहीं कहा कि ये स्वयं नारायण है, ये नारायण के उद्गम है। कहा नारायण के समान है और नारायण की तरह ही इसकी शक्ति होगी। तो नंद महाराज ने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वयं नारायण है। उन्होंने सोचा नारायण के समान है, ये एक वरदान मिला है उसे। तो ये सब बातें ब्रजवासियों ने सुनी तो वो भी संतुष्ट हो गए और वो भी अपने अपने घर खुश होकर चले गए। लेकिन उधर और एक व्यक्ति थे जो संतुष्ट नहीं थे, इंद्रदेव। उनका मन बड़ा विचलित था। उनको एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब क्या होगा। तो वो सुरभि देवी के पास गए। सुरभि मतलब ये भौतिक जगत में भी एक गोलोक है, जैसे कि भगवान के धाम वैकुंठ में गोलोक वृंदावन है, वो सच्चिदानंद धाम है। लेकिन इस भौतिक जगत के अंदर भी एक ऐसा लोक है, ग्रह है, जिसको गोलोक कहते हैं, जिसमें कि गाय रहती हैं। और ये सारे गाय सुरभि गाय हैं। अनंत मात्रा में ये गाय दूध देती हैं। तो उनकी जो प्रमुख हैं वो सुरभि, उनके पास इंद्रदेव गए, क्योंकि इंद्रदेव जानते थे कि श्री कृष्ण गोपाल हैं, गायों से प्रेम करते हैं। अगर इंद्रदेव अकेले चले जाते शायद श्री कृष्ण गुस्सा करते। तो उन्होंने ठीक समझा कि वो सुरभि को आगे आगे रखे, ताकि श्री कृष्ण सुरभि को देखेंगे, गुस्सा कम हो जाएगा, तब वो उनके पास जा सकेंगे। तो सुरभि इंद्रदेव को लेकर आई। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण के सामने आकर दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा से इंद्रदेव को दर्शन एक एकांत स्थान में दिया। वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि इसका कारण ये है कि इंद्रदेव का अभिमान तो बिल्कुल चूर हो गया था और सबके सामने उनको अपमानित नहीं करना चाहते थे, इसलिए प्राइवेट में एकांत स्थान में वो ले गए, जहां पर इंद्रदेव ने अपने पूरा तरह से दंडवत प्रणाम किया और कृष्ण की स्तुति करने लगे और कृपा याचना करने लगे और अपने मन में जो पश्चाताप हो रहा था उसको व्यक्त करने लगे। कहने लगे कि मैं कितना अज्ञान में था, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप ही परम सत्य हैं, आप ही भगवान हैं। इस तरह से स्तुति करके श्री कृष्ण को उन्होंने प्रसन्न किया। उधर जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की वाणी सुनी तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए। थे तो 7 साल के बालक, लेकिन इस समय भगवान के वाणी में बोलने लगे। जब तक श्री कृष्ण ब्रजवासियों के संग में थे, एक 7 साल के जो बच्चे के तोतली बोली में वो बोलते थे, लेकिन इस समय जब वो इंद्र के साथ बोल रहे थे तो उनकी जो आवाज है वो बादल के गरजने के समान गंभीर थी। बादलों की आवाज कैसे होती है, बड़ी गंभीर होती है ना, डीप। उसी तरह से श्री कृष्ण की आवाज थी, हालांकि शरीर था 7 साल के बच्चे का। और श्री कृष्ण कहने लगे, हे इंद्र, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में इतना घमंड आया था, तो मैं चाहता था कि तुम्हें इस घमंड से मुक्त करूं। जब मेरे भक्तों के हृदय में घमंड आ जाता है तो मैं इनके घमंड को कम करता हूं। तो केवल तुम्हें इस घमंड से मुक्त करने के लिए, तुम्हें तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैंने ये लीला रची है। तो अब याद रखो, कभी घमंड को अपने हृदय में आने नहीं देना। जानना कि कौन तुम्हारा स्थान क्या है, तुम्हारी शक्ति कहां से आती है, तुम्हारे प्रिय स्वामी कौन है। अब जाओ अपने जगह स्वर्ग लोक में जाओ और अच्छे ढंग से नम्र भावना से सेवा करते रहो। उस समय सुरभि वहां पर आई और कहने लगी कि हे भगवान, आप ही वास्तव में हमारे इंद्र हैं। राजा, इंद्र एक पद है और इस इंद्र का नाम था पुरंदर। जैसे सूर्य देव एक पद है और जो देवता है उनका नाम है विवस्वान, उसी तरह से इंद्र का नाम है पुरंदर। तो सुर भी जान गए थे कि ये जो इंद्र है ये क्या इंद्र है। सच्चे इंद्र तो ये हैं श्री कृष्ण, सच्चे हमारे राजा हैं, सच्चे हमारे स्वामी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपका अभिषेक कराना चाहते हैं, आपको इंद्र के पद में हम रखना चाहते हैं। तो फिर सुरभि गाय ने अपने दूध से अभिषेक कराया श्री कृष्ण का, और सारे देवताओं ने इंद्र के साथ ऐरावत के सूंट से, गंगा जी के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक करा लिया। और उस समय इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण का नाम रखा गोविंद, गायों को और इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाला। और इसके बाद फिर इंद्र और अन्य देवता सुरभि के साथ वापस चले गए, और भगवान श्री कृष्ण वापस अपने घर में चले गए, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से ये सुंदर गोवर्धन लीला समाप्त हो गई। तो भक्तों के लिए ये गोवर्धन लीला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से हम कई सबक सीख सकते हैं, और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीलाओं का श्रवण करते करते हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। श्री गिरि गोवर्धन की जय, गोवर्धन पूजा की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वैसे अभी समय हो चुका है, नहीं तो और बहुत कुछ सुंदर सुंदर चीजें गोवर्धन के बारे में सुनने लायक हैं, लेकिन अगर आप सब टाइम में आते सो हम जल्दी सही टाइम में शुरू करते, अच्छी तरह से कथा करते। लेकिन भक्त कभी कभी, कभी नहीं, हर उत्सव में बड़े देर से आते हैं, अंत में केवल आते हैं, इससे आपको भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा, केवल अंत का जो उत्सव है वही आपको मिलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जब ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं तो सही समय पे आएंगे तो उत्सव का पूरा फायदा मिल पाएगा। जब आखिर के समय अंत में आएंगे तो उसमें आपको भी फायदा नहीं है, और फिर डिस्टर्ब भी होता है, अन्य भक्तों को भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो कृपया अगले उत्सव से आप कोशिश कीजिए कि सही टाइम पे आएं, ताकि कार्यक्रम टाइम पे शुरू हो जाए और अच्छी तरह से हम सब उत्सव का पूरा फायदा उठा पाएं।